राधिका बेटा, आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और वो बार बार आपका नाम पुकार रही हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। आप अगर आकर एक बार उनसे मिल लेतीं तो अच्छा होता। ये आशुतोष जी के कहे शब्द थे। अजय के चीटिंग वाले इंसिडेंट के बाद से राधिका अर्चना जी से भी कट गई थीं। शायद उसकी अपनी माँ ने उसका दर्द नहीं समझा, इस बात का बहुत दुख पहुँचा था उसे, और उसके बाद से उसने उनसे अपना दर्द बांटना ही बंद कर दिया था। कभी फ़ोन पर बात भी होती तो बेमन से कुछ बातें करके फ़ोन काट देती थी। उसके मन में पनपी नाराज़गी बीतते वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी, जिसका एहसास अर्चना जी को भी हो रहा था। राधिका के कानों में रह रहकर आशुतोष जी के कहे शब्द गूंज रहे थे और मन को अजीब सी व्याकुलता ने घेरा हुआ था। नाराज़ तो थी वो उनसे, पर माँ थी वो उसकी, तो कैसे उनकी हालत जानते हुए उनसे मुँह मोड़ लेती? और माँ की ऐसी चिंता और मोह ने आज उसके कदमों को उस कमरे की ओर बढ़ने पर मजबूर कर दिया था, जहाँ का रास्ता भुला दिया था उसने। बोझल कदमों के साथ वो अजय के कमरे में आई। अजय जो सोने की तैयारी में था, राधिका को वहाँ देखकर पहले तो चौंक गया, फिर व्यंग्य भरे लहजे में बोला, क्या बात है, ये क्या देख रहा हूँ मैं? कहीं जागती आंखों से कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ मैं? कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है? तुम और मेरे कमरे में खड़ी हो, आज यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया तुम्हें? लगता है सारी अकड़ चंद दिनों में ही निकल गई और याद आ गया तुम्हें कि तुम इस घर में मेरी पत्नी की हैसियत से ही रह रही हो और तुम्हारी असली जगह ये कमरा है, इसलिए खुद ही मेरे पास चली आई। राधिका का उपहास उड़ाया था उसने और गुरूर एक बार फिर उसके सर पर चढ़कर बैठ गया था। राधिका पहले तो हिकारत भरी नज़रों से उसे देखते हुए सोचती रही कि ये इंसान उसकी नज़रों में और कितना गिर सकता है, कितना गुरूर है उसे खुद पर कि अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं और हमेशा अपने अहंकार के मद में चूर रहता है। फिर उसने सर झटक दिया कि इस शख्स के बारे में सोचने को फालतू वक्त नहीं था उसके पास। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। राधिका की बात सुनकर अजय के चेहरे के भाव जरा बदले। ओह, तो इसलिए तुम यहाँ आई हो? अपने घर जाना है तुम्हें, इसलिए मुझसे इजाज़त लेने चली आई यहाँ? पर अगर मैं तुम्हें ना जाने दूँ तो? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ आपसे इजाज़त लेने नहीं आई, आपको ये बताने आई हूँ कि कल सुबह मैं अपने घर जा रही हूँ और इसके लिए मुझे आपके क्या, इस घर में किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ यहाँ। जैसे आप अपनी मर्जी के मालिक हैं और जब चाहे जहाँ जा सकते हैं, वैसे मैं भी अपनी मर्जी से अपने घर जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। हाँ, आपको बताना मेरा फ़र्ज था, क्योंकि बदकिस्मती से आप अब भी पति हैं मेरे, सो बता दिया मैंने आपको। राधिका के तीखे तेवर और रूखा अंदाज, जिस तरह से उसने अजय को अर्श से उठाकर फर्श पर पटका था, वो तिलमिला उठा था। पर राधिका पर अब उसका बस कहाँ चलता था? राधिका तो अपनी बात कहकर वहाँ से जा चुकी थी और अजय बस दरवाजे को घूरता रह गया था, जहाँ से राधिका बाहर गई थी। अगली सुबह अजय ही उसे घर छोड़ने गया था, पर निकलते निकलते हुई देर और रास्ते का ट्रैफिक, राधिका को दोपहर हो गई थी अपने घर पहुँचते पहुँचते। सारे रास्ते वो खामोशी बैठी खिड़की से बाहर देखती रही। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और उसका ये एटीट्यूड देखकर अजय खींचता रहा। उसे घर के बाहर उतारकर वो वापस चला गया था। राधिका ने महीनों बाद अपने घर में कदम रखा, अपने परिवार को देखा तो खुद को भावुक होने से रोक न सकी। इस कमज़ोर लम्हे में रोकते रोकते भी उसकी आँखें छलक आईं। आशुतोष जी और अपनी बहनों से मिलने के बाद वो अपनी माँ से मिलने गई। उनका शरीर पहले से बहुत कमज़ोर हो गया था और देह में इतनी भी ताकत नहीं थी कि उठकर बैठ जाएं। आंखें मूंदे लेटी थीं वो। उन्हें देखते ही राधिका को अतीत में उनकी कही सभी बातें एक एक करके याद आने लगी और कदमों पर इतना भार पड़ गया कि उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। मन भारी हो गया था, चेहरे पर नाराज़गी के भाव उभर आए थे और अपनी माँ को इस अवस्था में देखकर दिल तड़प उठा था। अपने कदमों को लगभग घसीटते हुए राधिका उनके पास आई, अपनी नाराज़गी को दरकिनार करते हुए उनके पास बैठ गई और उनकी हथेली को अपनी हथेलियों में थामते हुए उन्हें पुकारा, मम्मी। राधिका की आवाज़ कानों में पड़ी तो अर्चना जी ने हौले से अपनी आंखें खोली। एक तो उम्र हो गई थी, उस पर बीमारी से कमज़ोर शरीर, उन्होंने नज़रों पर जोर डाला तब जाकर राधिका का चेहरा ठीक से नज़र आया। कैसी बेटी को विदा किया था उन्होंने और आज वही बेटी किस हाल में उनके सामने बैठी थी। कमज़ोर शरीर, बेनूर उदासा, मायूस चेहरा, पहले वाली रौनक कहीं खोसी गई थी। लबों पर दर्द भरी खामोशी बखरी थी, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। ना कोई सजा श्रृंगार, ना खुशी। अर्चना जी का मन भर आया, राधिका। उनकी कमज़ोर सी आवाज़ सुनकर राधिका ने तुरंत ही हामी भरी, हाँ माँ, मैं आपकी राधिका, आप मुझसे मिलना चाहती थी ना, देखिए मैं आ गई आपसे मिलने। अर्चना जी की आँखें झलक आईं और मन आत्मग्लानी से भर गया। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैंने बहुत जुल्म ढाए तुझ पर, एक माँ होकर भी तेरा दर्द नहीं समझ सकी। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये सब बातें मत कीजिए, बस आराम कीजिए। राधिका ने उन्हें रोकना चाहा, आखिर उनकी हालत ठीक नहीं थी और वो ऐसे में उन्हें परेशानी या दुख की वजह नहीं बनना चाहती थी। नहीं बेटा, आज बोल लेने दे, कर लेने दे आज अपने मन का बोझ हल्का, भगवान जाने दोबारा ऐसा मौका मिले ना मिले। माँ, राधिका ने तड़पते हुए उन्हें पुकारा तो अर्चना जी मुस्कुरा दी। ठीक ही तो कह रही हैं बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। राधिका जवाब में कुछ न सही, बस आंसुओं से भीगी आंखों से बेबसी से उन्हें देखने लगी। अर्चना जी ने गहरी सांस ली, जैसे आगे जो बोलने वाली हैं उसके लिए हिम्मत इकट्ठी कर रही हूँ। हम आपके गुनाहगार हैं बेटा, दामाद जी को हमने आपके लिए पसंद किया था। आपके पापा तो बार बार हमें समझा रहे थे कि ये रिश्ता हमारी हैसियत के बाहर है, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे, पर हमने उनकी एक नहीं सुनी। घर परिवार, धन संपत्ति और लड़के की अच्छी सूरत और नौकरी देखकर हमने फैसला सुना दिया कि आपका रिश्ता यही होगा। हमने बस ये सोचा कि अब आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, पर इन सब में हम ये देखना ही भूल गए कि उस लड़के का चरित्र कैसा है, वो आपके काबिल है भी या नहीं। हमारी जिद के कारण जल्दबाजी में आपकी शादी करवा दी गई। उसके बाद जब जब आपने हमें दामाद जी की कमियां और आपके प्रति उनके गलत व्यवहार के बारे में बताया, हम हमेशा आपके दुख को समझने के बजाय आपको समझाते रहे कि सब सह जाइए और इस रिश्ते को निभा लीजिए। आपकी गृहस्थी बसी रहे, आपके कारण आपकी बहनों की शादी में कोई रुकावट ना आए, हमारे परिवार की बदनामी ना हो, हमारे दिए संस्कारों पर सवाल ना उठे, इसलिए हम आप पर दबाव बनाते रहे उस रिश्ते को जिसमें आप खुश नहीं थी। हम जानते थे हम गलत कर रहे हैं, अपनी बाकी बेटियों के लिए आपके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, पर फिर भी हमने कभी आपको सहारा नहीं दिया। एक माँ तो क्या एक औरत बनकर भी नहीं सोच सकी कि आप पर क्या बीत रही होगी, कैसे रह रही होंगी आप वहाँ। हमने सब देखकर भी अनदेखा किया और आपको भी मजबूर किया। हमारे कारण आप आज तक सब खामोशी से सहती आ रही हैं, पर अब बस कर दीजिए बेटा, तोड़ दीजिए ये रिश्ता, वो आपके काबिल नहीं है, आप कभी उनके साथ खुश नहीं रह सकेंगी और अब हम आपको और दुखी नहीं देख सकते। आज तक आपने हमारी हर बात मानी है, ये आखिरी बात और मान लीजिए, अपनी मम्मी की इच्छा पूरी कर दीजिए, छोड़ दीजिए उन्हें और लौट आइए अपने घर, हम अपनी बेटी को अपने पास रख लेंगे।
राधिका की आंखें छलक आईं और मन भारी हो गया। जाने कब से वो बस यही तो सुनना चाहती थी उनसे। उसके लब थरथराए पर गले से शब्द बाहर ना निकले, बस आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसकी हालत देखकर अर्चना जी भी खुद को संभाल ना सकें। बेटा, मानेंगी ना आप अपनी माँ की बात, लौटकर दोबारा उस नरक में नहीं जाएंगी ना? उन्होंने अपना सवाल दोहराया, पर राधिका जवाब देने की हालत में नहीं थी, गला बुरी तरह चोक हो गया था। उसने सर हिलाते हुए उन्हें जवाब दे दिया। अर्चना जी के चेहरे पर सुकून के भाव उभर आए, उन्होंने अपनी कांपती हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो राधिका ने अपना चेहरा आगे कर दिया। अर्चना जी प्यार से उसके गाल को अपनी हथेली से सहलाने लगी। आप हमसे नाराज तो नहीं है ना बेटा, आपने अपनी माँ को माफ कर दिया ना? नहीं माँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, जो थी वो भी आज आपने दूर कर दी। मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, यहीं रहूँगी आपके साथ, आपके और बाबा का सहारा बनूंगी, अपने सपने पूरे करूँगी। देखना, मैं अपने टूटे रिश्ते का साया भी अपनी बहनों की जिंदगी और उनके भविष्य पर नहीं पड़ने दूंगी। मेरे वजह से आप सबको किसी के आगे शर्मिंदगी से सर नहीं झुकाना पड़ेगा। अर्चना जी की आंखें छलक आईं और लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। यही तो उनकी बेटी थी, जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा था, जिसके सपने उसके अपनों से जुड़े थे, जो अपने परिवार के लिए जीती थी, पर उन्होंने उसे क्या से क्या बनने पर मजबूर कर दिया था। एक बार फिर उनका मन भर गया। सदा खुश रहो बेटा, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। अर्चना जी ने अपना ममता और स्नेह भरा हाथ उसके सर पर रख दिया, जिसे राधिका ने अपनी हथेलियों से थामते हुए अपने लबों से चूम लिया। दोनों माँ बेटी की आंखें नम थीं, पर दिल में महीनों बाद सुकून था। जो खो दिया था उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती थी, पर जो बिगड़ गया था उसे कुछ हद तक ठीक किया जा सकता था। और अब तो राधिका को उसकी माँ का साथ मिल गया था। मम्मी, बहुत बातें कर ली आपने और रो भी बहुत ली, तबीयत पहले ही खराब है आपकी, अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। राधिका ने उनके आंसू पोंछे तो वो मुस्कुरा दी। राधिका कमरे से बाहर निकली तो वहां उसकी तीनों बहनें आंखों में आंसुओं का समुद्र कैद किए खड़ी थीं। राधिका उन्हें देखकर मुस्कुराई तो तीनों रोते हुए उसके गले से लग गईं। राधिका की भी आंखें छलक आईं। मैं तुम तीनों की जिंदगी पर अपने गमों और अतीत की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी, मैं तुम तीनों को आत्मनिर्भर बनाऊंगी और तुम्हारी शादी ऐसे लड़कों से करवाऊंगी जो तुम्हारे काबिल हों, जो तुमसे प्यार भी करें और सम्मान भी करें। जो मैंने सहा वो कभी तुम्हें नहीं सहना पड़ेगा। मन ही मन उसने एक फैसला लिया था। उसने तीनों को संभाला, फिर किचन में चली गई। कुछ देर बाद राधिका ने खिचड़ी बाउल में निकाली ही थी कि बदहवासी अर्पिता दौड़ती हुई वहां पहुंची। दीदी, मम्मी आंखें नहीं खोल रही, कुछ बोल नहीं रही। अर्पिता के शब्द जैसे ही राधिका के कानों में पड़े, किसी अनहोनी की आशंका से उसका दिल घबरा गया। हड़बड़ाहट में उसके हाथ से बाउल छूट गया, सारी खिचड़ी फर्श पर बिखर गई।
उसकी परवाह ना करते हुए राधिका बदहवासी अपनी माँ के कमरे की ओर भागी, पर वहां का जो नजारा उसने देखा उसके बाद उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, कदमों में इतनी ताकत न बची कि वो उसके शरीर का भार संभाल सके। दरवाजे का सहारा लेते हुए वो वहीं फर्श पर गिर गई। आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया और दर्द से तड़पती हुई चीख निकल गई,
माँ।
उसकी हृदय विदारक करुण रुदन सुनकर उसकी तीनों बहनें भी रो पड़ी। आवाज सुनकर वहां पहुंचे आशुतोष जी का शरीर भी शिथिल पड़ गया और आंखें पथरा गईं। जाने वाला जा चुका था, पीछे रह गया था उसका रोता बिलखता बिखरा परिवार। टू बी कंटिन्यूड।